ओम शांति। बाप दादा जब सभा में पूछते हैं सभी खुश है तो सभी हाथ खड़ा कर देते हैं, और तुरंत बाप दादा पूछते हैं सभी सदा खुश रहते हो तो कई बार हाथ नीचे भी आ जाता है। कौन सी ऐसी विशेष कला है जो आज बाबा ने मुरली में भी हमें सिखाई है, किस तरह उसे अपनाने से हम सदा खुश रह सकते हैं? आइए इस विषय पर क्लास सुनेंगे। जो अधिकार से ये बात सुना सकते हैं, जिनको हमने सदा खुश ही देखा है, त्रिपुरा आगरतला से आए हुए कविता बहन जी, आपका हम सभी सभा में स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है। आप बचपन से ही ज्ञान में चल रहे हैं, पिछले 27 साल से समर्पित रूप में त्रिपुरा आगरतला में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बांग्लादेश में सेवाएं शुरू करने के भी आप निमित्त रहे हैं। आइए ऐसी सदा खुश रहने वाली आत्मा के द्वारा हम क्लास सुनेंगे, सदा खुश कैसे रहे। आगरतला से पधारे हुए कविता बहन जी।
ओम शांति। आज का हमें जो टॉपिक मिला, ये खास करके इस सीजन का हम सब का टॉपिक है। बाबा ने हम सबको इस सीजन में जो भी मुरली चलाई, सारी मुरली की सार यही था कि सदा खुश रहो। आप सब ने भी नोट किया होगा, पहले बाबा आते थे तो लंबी मुरलियां चलती थी और ज्ञान की अलग अलग गहरे पॉइंट, पुरुषार्थ की पॉइंट बाबा सुनाते थे। लेकिन आजकल परम शिक्षक बाबा बहुत छोटी मुरली सुनाते हैं, और खास करके प्राय मुरली में भी यही बात आती है, बच्चे खुश रहते हो, खुश हो, सदा खुश हो, खुशी में रहना, बस यही बात बाबा बार बार रिपीट करते हैं और मुरली पूरी करते हैं। ये बात हम सब ने देखा ना, जब बाबा एक बार नहीं बार बार और सारी मुरली में यही बात कहते, तो इससे हम सबको चिंतन तो जरूर चलता है कि बाबा ये बात क्यों इतना कहते हैं। तो आप सब ने भी चिंतन की होगी, वास्तव में खुश रहना ही पुरुषार्थ है और खुश रहना ही प्राप्ति है। अगर सदा खुश रहना हमने सीख लिया, सदा खुश अपनी स्थिति को बना लिया, तो इसमें सारा पुरुषार्थ आ गया, इसमें सारा पुरुषार्थ आ जाता है। इसलिए शायद बाबा दूसरी और विस्तार की बातों को न सुनाकर इन दिनों में बस खुश रहने के ऊपर ही बाबा सारी प्रकाश डालते हैं। तो जैसे बाबा भी अपनी पढ़ाई को सार में ला रहे हैं, वैसे हम भी अपनी पढ़ाई और पुरुषार्थ को सार में, संक्षेप में लाना चाहते हैं। तो यही पुरुषार्थ हमें भी करना है कि हमें क्या करना है, सदा खुश रहना है। खुश रहना और सदा खुश रहना, इन दो बातों में काफी अंतर है। खुश रहना तो हम सब खुश रहते हैं, रोज ही, कभी कभी, दो अंतर है ना इसमें। तो वैसे तो बाबा के बच्चे खुश रहते हैं, लेकिन मौके मौके पर खुश भी रहते हैं और मौके पर बेखुश भी हो जाते हैं। इसलिए बाबा ने इसके साथ कौन सा शब्द जोड़ दिया, सदा खुश। खुश रहने के कई वजह हमें मिल जाते हैं, कई कारण मिल जाते हैं तो हम खुश रहते हैं। लेकिन बीच बीच में ऐसी भी बातें आती हैं जिस समय हमारी खुशी डाउन हो जाती है, परंतु पुरुषार्थ तो वही है जो डाउन होने पर भी हम खुश रहें। परिस्थिति उल्टी हो, विपरीत हो, फिर भी हम खुश रहें, तो ये है पुरुषार्थ। इसलिए बाबा ने सदा शब्द को इसमें जोड़ दिया, क्योंकि सदा खुश रहना माना सदा अटेंशन देना। और बाबा के बच्चे जब हम बनते हैं तो बाबा सबसे पहले हमारी खुशी का दीपक जगा देते हैं। बाबा के बच्चे बनने के पहले हम सब खुश तो रहते थे, लेकिन सदा नहीं रहते थे। जब खुशी मिलती थी तो खुश हो जाते थे, जब निंदा मिलती थी तो रो लेते थे। आराम मिलती, सहूलियत मिलती, सहयोग मिलती, प्यार मिलता तो हम खुश रहते थे, लेकिन थोड़ी सी उसमें कमी आ जाती तो हम बेखुश हो जाते थे, असंतुष्ट हो जाते थे। लेकिन जब से बाबा के बने, बाबा ने हम सबकी सच्ची खुशी का दीपक जगा दिया। और दीपक जगा करके बाबा ने हमें काम दिया, बच्चे आप चलते रहो, एक बात ध्यान देना कि ये दीपक बुझ न जाए। तो खुशी का दीपक तो बाबा ने जगा दिया। बाबा के मिलने के बाद हम बेहद खुश हो गए, हुए ना हम सब, आप सब हुए ना, इतना खुश पहले कभी थे नहीं थे। बाबा के बनने के बाद हम सबको रियल खुशी मिली। असली खुशी क्या होती है जीवन में, वो चीज बाबा के बनने के बाद ही मिली। अब वो आध्यात्मिक खुशी है, वो बाबा से मिली हुई खुशी रूपी वरदान है। परंतु बाबा ने बड़ा काम दे दिया कि क्या करना, ये जो मैंने दीपक जगा दिया, इस दीपक को बुझने न देना। अब दीपक जगने के बाद कई बार हवा भी आती है, तूफान भी आता है, कई बार बिल्ली भी आकर के दीपक बुझा देती है, तेल भी खत्म होता है, कई बार जो बाती होता है वो भी छोटा हो जाता है। कितनी सारी बातों का ध्यान देने से वो दीपक जगा रहेगा। दीपक जगा रहे, किसी ने दीपक को कंटिन्यू जगा के रखने का, जैसे नवरात्रि में या कोई व्रत लेते हैं तो अखंड दीपक जगाते हैं ना। अखंड दीपक जगाने का जिसने संकल्प लिया, वो तो चैन से सो भी नहीं सकता, क्योंकि सो गया घोड़ा बेच के तो हो सकता रात को दिया बुझ जाए। इसलिए वो हरदम नींद में भी जागा रहेगा, बार बार किसको देखता रहेगा, दीपक को देखता रहेगा। कोई कामकाज भी करेगा तो भी नजर उसकी दीपक में ही रहेगी। थोड़ा हवा लगेगी, पत्ता हिलेगा, बाहर में दौड़ के जाएगा, हमारे दीपक को तो हवा नहीं लग रही है। वो दीपक को बचाने की ही हरदम पुरुषार्थ में रहेगा, क्योंकि उसने अखंड दीपक जगाया, उसने अखंड दीपक जगाया है। जितना दिन व्रत रखा है उतना दिन ये दीपक जगना है, संकल्प लिया है। तो इसी प्रकार बाबा ने भी हम सबको क्या दिया, खुशी का दीपक जगाकर हमारे हाथ में दे दिया और कहा इस दीपक का ध्यान रखना, ये दीपक सदा जगा रहे तो आप पुरुषार्थ में चार चांद लगाकर आगे बढ़ते जाओगे। ये दीपक सदा जगा रहेगा तो आप पास विथ ऑनर होंगे। ये दीपक सदा जगा रहेगा तो आप सारी दुनिया को खुशी बांट सकोगे। आप खुश रहोगे तो भगवान भी आपसे खुश रहेंगे। आप खुश रहोगे तो माया भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी। इसलिए खुशी का दीपक जगा के रखना। तो खुशी का दीपक जगा के रखने में ही सब कुछ आ जाता है। लेकिन ये दीपक उसका जगा रहता है जो हरदम इसको ध्यान में रखता है। इसलिए सदा खुश रहना एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। खुश रहना वैसे हर पुरुषार्थ का नीट रिजल्ट है। खुश रहना, खुश होना पुरुषार्थ का नीट रिजल्ट है। जैसे समझ लीजिए, मुझे कुछ सेवा मिली आज, आज ये भोजन बनाना है, भोग बनाना है, मुझे सेवा मिली और मेरा लक्ष्य रहेगा कि मैं अच्छी तरह इस सेवा को निभाऊं ताकि इस सेवा से लाभ लेने वाले को खुशी मिले, संतुष्टि मिले, इस भोग को खाकर लोगों को तृप्ति मिले, शांति मिले, सुकून मिले, बाबा की याद आए। जब इस सेवा को मैंने प्यार से निभाया और जिन्होंने भोजन खाया, भोग खाया, उनको संतुष्टि और तृप्ति मिली, उन्होंने क्या दिया, हमको दुआ दिया, उन्होंने दुआ दिया और दुआ हमारे पास आकर के क्या बन गई, खुशी में कन्वर्ट हो गई। दुआ खुशी में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर हमें मिला हुआ सेवा को हमने ठीक से निभाया तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, खुशी। तो इस ब्राह्मण जीवन में हम जो कुछ कार्य करते हैं, कार्य अगर सक्सेसफुल होता है, कार्य अगर निर्विघ्न होता है, सेवा अगर उत्तम होता है, तो उसका नीट रिजल्ट होता है खुशी मिलना। इसलिए खुशी अपने आप में एक प्राप्ति है। परंतु दूसरी तरफ खुशी एक पुरुषार्थ है, खुशी एक पुरुषार्थ है। नीट रिजल्ट तो अंत में मिलती है, सेवा को निपटाने के बाद उसकी रिजल्ट जब आती है वो खुशी के रूप में आती है, वो तो अंत में मिलती है। लेकिन खुशी प्राप्त करने के लिए जो कुछ करना वो खुशी खुशी से करना, इसलिए खुशी भी क्या है, एक पुरुषार्थ है। अब हमको भोग बनाने की ड्यूटी मिली, मैं अगर खुशी खुशी से करूं, ड्यूटी मिलते ही मैं इसको खुशी से हाजी कहूं और सचमुच अपने आंतरिक खुशी से उस सेवा को ग्रहण करूं, खुशी खुशी करूं और इस सेवा को करते हुए बीच में जो भी प्रतिकूलता आए, विघ्न, उसको भी खुशी के साथ ही मैं खुशी खुशी ही पार करती जाऊं, तब जाकर के अंत का नीट रिजल्ट खुशी मिलेगी। तो नीट रिजल्ट खुशी पाने के लिए पुरुषार्थ में भी क्या चाहिए, खुशी चाहिए। तो क्या हुआ, खुशी हमारा मूलधन है, कैपिटल है। जैसे बिजनेस करते हैं लोग, व्यवसाय करते हैं, तो क्या करते हैं, व्यवसाय का उद्देश्य क्या है, व्यवसाय में सफल होना, बिजनेस अच्छा होना, माना उस व्यवसाय से अच्छा पैसा मिलना, अच्छा अर्निंग होना। तो पैसा मिलना बिजनेस की प्राप्ति है, परंतु बिजनेस को शुरू करने के लिए भी तो पैसा ही चाहिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए पैसा ही इन्वेस्ट करना है, पैसा को लगा के पैसा को इन्वेस्ट करते हुए फिर पैसा की प्राप्ति के लिए बिजनेस करना। तो पैसा ही यहाँ पुरुषार्थ है और पैसा प्राप्ति ही लक्ष्य है। परंतु मूलधन थोड़ा हो सकता है और बाद में जो बिजनेस से जो प्रॉफिट मिलेगा वो ज्यादा होगा। इसी प्रकार इस ब्राह्मण जीवन में हम जो कुछ पुरुषार्थ करते हैं, छोटी पुरुषार्थ, बड़ी पुरुषार्थ, स्व पुरुषार्थ, स्व सेवा या दूसरों की सेवा, जो भी है, इन सब को अच्छी तरह निपटाने के लिए, अच्छी तरह करने के लिए या शुरू करने के लिए भी हमको खुशी रूपी कैपिटल ही चाहिए। तो खुशी क्या चीज है, हमारा संपत्ति है, हमारा कैपिटल है। जिस व्यक्ति के पास कुछ भी कैपिटल नहीं है वो बिजनेस शुरू ही नहीं कर सकता है ना। कई लोग कहते क्या करूं, मैं बिजनेस करना चाहता हूं लेकिन कैपिटल ही तो नहीं है। लेकिन जिसके पास थोड़ा बहुत कैपिटल है उस थोड़े को ही वो काम में लगाता और मेहनत करते 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 बहुत बड़ा कैपिटलिस्ट बन जाता है। तो बाबा ने हम सबको इस ईश्वरीय जीवन में, जब से हम बाबा के बच्चे बने, बाबा ने हमको कमाई का रास्ता दिखा दिया। और ये कमाई कौन सा कमाई है? आधा कल्प तक चलने वाली कमाई है। आधा कल्प के लिए सोर्स ऑफ इनकम जो है अभी हमको जमा कर लेना है। सत्युग में तो नौकरी नहीं करना है, बिजनेस भी नहीं करना है, पसीना भी नहीं बहाना है, आराम से खाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, रहेंगे, धन मिलेगा। वो धन कहाँ से अर्न हुआ? बिना अर्न किए तो इस दुनिया में किसी को भी कुछ नहीं मिलता। तो वो अर्निंग हम संगम युग में करते हैं, इसलिए संगम युग में जो कुछ कर रहे हैं ये तो अर्निंग कर रहे हैं, ये कमाई कर रहे हैं। सतयुग के लिए भी कर रहे हैं, त्रेता के लिए भी कर रहे हैं, उसके बाद के कई जन्मों तक के लिए भी हम अभी ही करते हैं। तो ये जब कमाई है, ये पुरुषार्थ जीवन कमाई करने का समय है, तो कमाई को शुरू करने के लिए क्या चाहिए? वही कैपिटल चाहिए। इसलिए कैपिटल के रूप में थोड़ा धन बाबा हम सबको शुरू में ही दे देते हैं। जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं, बाबा हमको क्या कर देते हैं? खुशी रूपी गिफ्ट दे देते हैं। ऐसी खुशी मिलती है बाबा के बनने के बाद, पहले कभी नहीं मिली होती। हम आश्चर्य हो जाते, इतना खुशी कहाँ से आया, क्या बात है। तो वो खुशी तो बाबा ने हमको दिया। लो बच्चे, ये खुशी रूपी मूलधन मैंने दे दिया, अब इसको लेकर अपना बिजनेस शुरू करो। जो समझदार होता है उस खुशी को काम में लगाते 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 बहुत बड़ा बिजनेस कर लेता, बहुत बड़ी कमाई कर सकता है। तो कहने का भावार्थ था कि बाबा ने हम सबको ब्राह्मण जीवन की शुरुआत में ये मूलधन हर एक को दिया है। इस मूलधन को लेकर के हम सबने ब्राह्मण जीवन शुरू किया। ब्राह्मण जीवन शुरू में हम सब बहुत खुश रहते हैं ना, खुश थे ना। आज अगर हम थोड़ा पीछे की ओर मुड़ करके देखें, ज्ञान में जब हम शुरू में आए थे तब हमारी खुशी का कोई पारावार नहीं था, बहुत खुशी थी। लेकिन आज हम देखें कि क्या उतनी खुशी अभी भी है? अगर है तो हमने खुशी रूपी मूलधन को काम में लगाया है, संभाल के रखा है, उसको और बढ़ोतरी की है। अगर हम पीछे की ओर मुड़ करके देखें, शुरू में जो खुशी थी आज उतनी नहीं है, तो जरूर हमने मूलधन को पूरे काम में नहीं लगाया है। इसलिए बाबा मुरली में कहते, बच्चे बचपन के दिन भुला न देना, आज हंस से कल रुला न देना। ईश्वरीय बचपन के शुरू के दिन बहुत खुशी बहुत मौज के होते हैं, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते आप इस खुशी को भूल न जाना। आज हंस रहे हो कल रुला न देना, क्योंकि बाबा को पता है नाना प्रकार की परिस्थितियाँ आएंगी। बच्चों की खुशी कम हो सकती है, परंतु बच्चे सियाने हैं, बच्चे समझदार हैं, तो बच्चे अपनी खुशी की मात्रा कम होने नहीं देंगे। ये है हर ब्राह्मणों का लक्ष्य उद्देश्य। तो बाबा ने कहा कि बच्चे सदा खुश रहना, और कोई पुरुषार्थ हम न भी करें लेकिन सदा खुश रहने का ही पुरुषार्थ करें तो इसमें सारा पुरुषार्थ आ जाता है। भक्ति मार्ग में कहानी आती है, वो शिव माना शंकर की बात सुनाते हैं कि कार्तिक और गणेश दो पुत्र, उनको कहा विश्व का परिभ्रमण करके आओ, जो पहले आएगा जो फर्स्ट होगा। तो कार्तिक तो गया मयूर पक्षी में उड़ करके सारे विश्व का परिभ्रमण करने, और गणेश के लिए कहते इतना बड़ा भारी पेट चूहे के ऊपर वो कैसे जाएगा। उसने उधर ही माता पिता का परिक्रमण कर लिया, तो गया ही नहीं। तो पूछा उसने, कहा हमारे माता पिता जो है वही तो विश्व है, और कहाँ विश्व में जाऊं। उसने ये पुरुषार्थ किया, इसमें सारा पुरुषार्थ आ गया, वही फर्स्ट हो गया। तो बाबा ने हम सबको बहुत पुरुषार्थ की बात बताई इतने दिन तक, लेकिन अब परीक्षा नजदीक है। अब बाबा लंबी चौड़ी बातें नहीं पढ़ा रहे हैं, शॉर्टकट पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? बच्चे सदा खुश रहो। सदा खुश रहने में ही सारा पुरुषार्थ आ जाता है अगर हम इस बात को पकड़ लें और इस खुशी को ही बनाए रखने की सारे दिन कोशिश करें तो सारा पुरुषार्थ इसमें आ जाएगा। और इतनी बड़ी पुरुषार्थ की जो जो बात हमसे छूट भी गई होंगी वो इसमें आ ही जाएंगी। हमें सदा खुश रहना है। खुशी देखिए, हम खुश कब होते हैं? हमें अच्छी सहूलियत मिली, जैसे कई भाई बहने मधुबन आते हैं, अच्छा कमरा मिल गया कहते बहुत खुश, बाबा से मिलन मनाने के लिए सामने बैठने को मिला, इस बार तो बाबा से मिलन बहुत बढ़िया हुआ, हमको बैठने को भी आगे मिला, रहने को भी अच्छा कमरा मिला, खाने को भी बहुत अच्छा मिला, इस बार तो बाबा ने भरपूर करके भेजा। फिर नेक्स्ट बार आते हैं तो कमरे में भी भीड़ देखते हैं, बहुत सारे लोगों के बीच में रहने को मिला, बाथरूम में भी क्यू तो डाइनिंग में भी क्यू तो डायमंड हॉल में भी क्यू, फिर वहां जाके कहते इस बार तो बाबा का मिलन इतना अच्छा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? बाबा तो पिछले बार जैसे मिले थे इस बार भी ऐसे ही मिले? बाबा ने तो अपनी वरदानी दृष्टि सबको दी, जैसे दी इस बार भी दी, आगे बैठे वाले को जैसी दी पीछे बैठने वाले को भी उतनी ही दी, बल्कि बाबा हाईलाइट करने के लिए बार बार कहते पीछे बैठने वालों को मैं देख रहा हूँ, थोड़ा खातरी करते। लेकिन खुशी में अंतर था। क्यों? अपनी मन की कंडीशन के ऊपर ये डिपेंड करता। आते ही अच्छा कमरा मिल गया खुश, बाकी सब खुश। आते ही देखा कमरा ठीक नहीं है, मन बेखुश हो गया, हर बात में बेखुश। तो देखिए, मन बेखुश होता है तो हमारा पुरुषार्थ भी डाउन होता है, हमारी बुद्धि की ग्रहण क्षमता जो है वो कम हो जाती है। और मन खुश होता है तो जैसे लगता है कि आसमान भी मेरे मुट्ठी की मुट्ठी में है, नजदीक है। लेकिन परिस्थिति में तो अप डाउन कभी ना कभी होगा ही ना। कभी बाबा बिल्कुल आपको राजाई हाल में रखेगा, कभी तो पट में भी सुलाएगा, कभी तो बहुत आराम से आप खाएंगे, कभी भीड़ में लाइन लगाना होगा। ये अप एंड डाउन दोनों प्रकार की परिस्थितियां बाबा हमारे पास भेज करके देखता है कि देखता हूँ इस बच्चे ने खुशी का दीपक सदा के लिए जगाया हुआ है या आराम मिलने से खुश, आराम की कमी होने से बेखुश, देखता है ये बाबा हमको देखता है। तो समझदार बच्चे क्या करते हैं, बेखुश वाली परिस्थिति में भी खुश होके दिखाते हैं वो अच्छे खिलाड़ी हैं, वो विनर हैं। और जो लूजर हैं वो अच्छी परिस्थिति में खुश, थोड़ी परिस्थिति इधर उधर हुई तो बेखुश। लेकिन हम पुरुषार्थी हैं, हम साधक हैं। साधना कैसी होती है, केवल आराम में होती है? नहीं। भक्ति मार्ग के जो साधक होते थे हिमालय में जाकर के कठिन परिस्थितियों में वो तपस्या करते थे, देखते थे कि ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी हमारा मन हिलता है या नहीं। बाबा तो हमें दोनों प्रकार की परिस्थिति देकर देखता है, कभी बहुत प्राचुर्य देता है, कभी अभाव भी देता है, कभी बहुत खातरी भी देता है, तो कभी बहुत उसका प्रतिकूल भी होता है, कभी बहुत प्रशंसा भी मिलती है तो कभी निंदा भी मिलती है। लेकिन साधक वही है, विनर वो है, अंत तक जीतने वाला वो है, कमाई पूरे कल्प के लिए जमा वो कर सकता है जिन्होंने दोनों प्रकार की परिस्थिति में अपने मन को खुश रखा। खुश कोई कमरे में नहीं है, खुशी कोई कमरे में नहीं, खुशी कोई बिस्तर में नहीं है, खुशी कोई आराम में नहीं है, खुशी खाने में नहीं, खुशी तो हमारी अंदर में ही, खुशी का जनरेटर हमारे अंदर में है, अंदर से जनरेट करना होता है इसको। जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है ना। जैसे जब करंट चली जाती है तो हमारे घर में जनरेटर होगा तो क्या करेगा, वो जनरेटर को स्टार्ट कर देंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, जनरेट करके सप्लाई करेगा। वो जैसे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है ऐसे ही हमारे अंदर में जनरेटर है, और वो जनरेटर क्या करेगा, खुशी को पैदा करेगा, प्रोड्यूस करेगा। बाहर का इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो क्या हुआ, हम अंदर की इलेक्ट्रिसिटी से अपने आप को उजाला रखेंगे। बाहर से कोई खुशी दे ना दे तो क्या हुआ, हम खुश रहेंगे। अंदर की खुशी से हम खुश रहेंगे। जिन्होंने ऐसा संकल्प लिया है वो सदा खुश रहेंगे। तो सदा खुश रहने के लिए कुछ बातों के ऊपर थोड़ा ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि खुशी हमारी कमाई है, खुशी हमारा फसल है। फसल है, कोई किसान खेत में फसल बो देता है, उसके बाद खेत में जाता ही नहीं, फसल काटने के समय पर जाता, फसल मिलेगा? इस बीच में तो कितना कुछ आ गया ना, कीड़े आए, कभी सूखा आया, कभी बारिश आया, कभी क्या आया, कभी पक्षी आ गए, फसल खा गए। फसल पाने तक किसान को रोज खेत में क्या करना पड़ता, ड्यूटी देना पड़ता। इसी प्रकार खुशी रूपी फसल पाना है तो खुशी को किसान की तरह नाचर करना है, देखना है, देखते रहना है। तो क्या देखना है, किन किन बातों को देखना है? सबसे पहली बात तो मैंने देखा, खुश वो रह सकता है जिनका मन सरल हो, जिनके सोचने का तरीका सरल हो। सरलता एक बहुत बड़ी गुण है, पहली क्वालिटी है। एक छोटा बच्चा दुनिया में आता है, उसमें सबसे पहली क्वालिटी क्या होती है बताइए, शिशु बच्चा, सरलता। शिशु सरल होता है इसलिए वो सदा खुश रहता है। उसको दुख का कोई पता नहीं होता, कोई तकलीफ मिली, गिर गया, चोट लगा, रो देता, अभी रोता, थोड़ी देर बाद फिर हंस देता है, तुरंत हंस देता है। रोते रोते एक चॉकलेट दिखा दो, वो हंसते हंसते पकड़ लेगा, रोना भूल जाएगा। किसी ने उसको कुछ कहा भी, डांट भी लगाया, वो तुरंत रो देगा। थोड़ी देर बाद जब वो उसको बुलाते आओ आओ, उसकी गोदी में चला जाता है। वो याद नहीं रखता कि इसने मुझे थोड़ी देर पहले डांट लगाया था, इसने मुझे कल कुछ बोला था, उसको बुद्धि में वो बात याद नहीं रहता। वो तुरंत भूल सकता, तुरंत फुल स्टॉप लगा सकता। तुरंत फुल स्टॉप लगाना माना यही सरलता है। हम तुरंत फुल स्टॉप नहीं लगा सकते, माना सरलता का अभाव है। वही बात हम सोचते रहते, उसने मुझे ऐसे कहा था, कब कहा था, 7 साल पहले। 7 साल पहली पुरानी टेढ़ी बाकी बात अपनी बुद्धि में रख के बुद्धि को टेढ़ा कर दिया हमने। इसलिए सरल बनना सीखो। सरल माना जो बात जब हुई उसको उसी समय बुला दो, बच्चे जैसा तुरंत, वो तुरंत खुश। बच्चे को कोई बेखुश नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर अपनी सरलता रूपी दिव्य गुण है। हम सबको भी बाबा ने दिव्य गुणों की लिस्ट में सरलता को सबसे पहले दिखाया। बच्चे आप भी सरल बनो, कोई भी बात जटिल तरीके से सोचो नहीं, कुटिल तरीके से सोचो नहीं। जो कोई भी बात को जटिल सोचता उसके जीवन का रास्ता भी जटिल बन जाता, कुटिल तरीके से सोचता तो उसका रास्ता भी कुटिल बन जाता, टेढ़ा बाका। जो सरल सोचता उसका जीवन का रास्ता सरल होता है, सरल रेखा बन जाता उसका जीवन। इसलिए सोचने की तरीका को ऑलवेज सरल बनाना और कोई भी बात का पॉजिटिव साइड को निकाल के देखना, ये एक हैबिट बना लेना चाहिए। ये एक पुरुषार्थ है, खुशी को बचाए रखने का पुरुषार्थ। मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ, मैंने जो पुरुषार्थ अपनाया उसके आधार पर मैं आपको ये शेयर कर रही हूँ। हर बात के अंदर का कुछ न कुछ पॉजिटिव निकाल लीजिए, हर बात के अंदर कुछ न कुछ पॉजिटिव मैसेज है कि नहीं है? है ना? बस उस पॉजिटिव को निकालना सीख लिया तो कभी भी हम बेखुश नहीं होंगे। लेकिन सोचने का ढंग ही मनुष्य को दुख देता है, खुशी गायब कर देता है। बिल्कुल सिंपल से बात भी कोई जटिल तरीके से सोचते हैं, सोच सोच के दुखी हो जाते हैं, लेकिन बात तो कुछ भी थी ही नहीं, बात तो कुछ भी थी ही नहीं। अब देखिए यह है क्या, सोचने का ढंग, सोचने का तरीका। दूसरी बात, हर बात का एक ऊंचा मैसेज, ऊंचा। बाबा ने क्या कहा है बच्चे, ऊंचा सोचो। एक छोटी सी उदाहरण, कई बार उषा दीदी क्लास में सुनाती हैं, तीन लेबर काम कर रहे थे, एक बड़ा इमारत बन रहा था कोई मंदिर। एक रिपोर्टर ने जाकर एक को पूछा, पत्थर तोड़ रहे थे लेबर, पूछा क्या कर रहे हो? उसने कहा क्या कर रहा हूँ, अपना नसीब कोट रहा हूँ, पत्थर तोड़ रहा हूँ, बड़ा दुख से बताया। दूसरे को पूछा क्या कर रहे हो भाई, कहा। उसने कहा क्या कर रहा हूँ, मैं अपना गुजारा रोजी रोटी परिवार के लिए कमा रहा हूँ। और तीसरे को पूछा भाई क्या कर रहे हो, उसने कहा मैं मंदिर का निर्माण कर रहा हूँ। उसकी एक्सप्रेशन ही ऐसी थी, लेकिन तीनों पत्थर ही तोड़ रहे थे। तीनों को जो पैसा मिलता था वो एक जैसा ही मिलता था, लेकिन कोई दुखी दुखी काम कर रहा था, कोई बोझ ढो करके परिवार के लिए बड़ा मुश्किल से, और कोई क्या सोच रहा था मंदिर का निर्माण करा, जबकि मंदिर को निर्माण करने वाले आर्किटेक्ट कोई और थे। वो तो बेचारा पत्थर ही तोड़ता था, लेकिन उसके मन में इस कार्य की महानता स्पष्ट थी कि मेरे तोड़े हुए पत्थर मंदिर में लग रहे हैं, मैं कोई साधारण काम नहीं कर रहा हूँ। ये सोचने का तरीका उसको क्या दे रहा था, खुशी दे रहा था। इसी प्रकार इस ब्राह्मण जीवन में भी खुश कौन रहते हैं, जिसने जीवन की महानता को समझा है, हर दिन की महानता को समझा है, हर सेवा की महानता को समझा है, हर कार्य की महानता को समझा है, हर घटना के पीछे का छुपा हुआ कोई पॉजिटिव मैसेज को समझने की कोशिश किया है, वो खुश रहता है। इंग्लिश में कहते हैं, एक कहावत है, प्रोवर्ब है, एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग। देखिए, हर कोई गलत काला मैसेज होगा, निगेटिव मैसेज होगा, उसके पीछे भी कुछ न कुछ पॉजिटिव होगा, ठीक है ना? जो सक्सेस होने वाले लोग होंगे, 100 बार फेलर होने के बाद भी वो सक्सेसफुल होने का सपना नहीं छोड़ेंगे, और वो कहेंगे 100 बार फेलर हुआ तो क्या हुआ, 100 बार में 100 लेसन मैंने सीख लिया, 100 लेसन सीख लिया कि किन किन बातों को वर्जन करने से व्यक्ति सक्सेसफुल हो सकते हैं, वो मैंने सीख लिया। तो ये व्यक्ति जरूर कभी न कभी सक्सेसफुल होगा, वो फेलियर होते भी हंस सकता है। तो ये क्या है, हमारे सोचने का तरीका। तो इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे खुशी को बचा के रखो, तो पहला हमारा सोच अच्छा चाहिए। दूसरी बात तो बाबा ने बताया ये, इस बार सीजन में भी बाबा ने कहा अमृत वेला क्या करो, अमृत पियो बाबा से, अमृत वेला पावरफुल बनाओ, रोज अमृत वेले उठ करके बाबा से बहुत मीठी मीठी रूरियान करो। जो ब्राह्मण बनने के बाद अमृत वेले बाबा से प्यार से बात करते हैं, थोड़े ही सही, उनका सारा दिन खुशी से भर जाता। और दूसरा, खुशी का खजाना हमारा मुरली है। मुरली को हम जितना महत्व देंगे उतना हम खुश रहेंगे। दूसरी बात है कि बाबा ने हम सबको जहाँ रखा है, जिस कार्य के लिए निमित्त बनाया है, जिसको जो सेवा दिया है, जिसके साथ रखा है, उसी को ही बेस्ट समझना, उसको बेस्ट अपॉर्चुनिटी समझना, तो हम खुश रहेंगे। कई लोग सोचते ये जॉब मिला इसलिए मैं खुश नहीं हूँ, इसके बदले वो जॉब मिलता था तो शायद मैं खुश रहता था। लेकिन जिसने अपने अंदर की खुशी जनरेट करने का तरीका नहीं सीखा, उसको इस जॉब से छुड़ाकर दूसरे जॉब में ले जाइए तो भी वो खुश नहीं रहेगा, उस जॉब से छुड़ाकर दूसरे तीसरे चौथे किसी भी जॉब में जाएगा तो भी वो खुश नहीं रहेगा, क्योंकि खुशी तो जॉब से नहीं मिलती, खुशी अपने अंदर से पैदा होती है। कोई कहते हैं मुझे इस सेंटर में ज्ञान मिला, ये यहाँ का वातावरण मुझे अच्छा नहीं लगा, यहाँ इन लोगों के साथ सेवा करने को मिला इसलिए मुझे खुशी नहीं मिली, फलाने लोगों के साथ रहने को मौका मिलता तो शायद मैं बहुत खुश रहता। इसलिए वो खुशी रूपी मृग मरीचिका को ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो तो सोने का मृग जैसा है, वो कभी मिलने वाला नहीं। आज इस हालत में खुशी नहीं मिली तो किसी भी हालत में मिलने वाली नहीं है। इसलिए आज के दिन ही मुझे, आज की परिस्थितियों में ही मुझे खुशी ढूंढना है। आज की परिस्थितियों में मैंने खुश रहना सीखा तो कल जो परिस्थिति आने वाली है उसमें भी मैं खुश रह सकता हूँ। ये खुशी ऐसी चीज है, इसलिए खुशी की चाबी हमारे अंदर है, दूसरे के पास नहीं। और वो चाबी बाबा ने हम सबको दे दी है, वो है हमारी बुद्धि, दिव्य बुद्धि, दिव्य बुद्धि से हम अगर कोई भी बात को पॉजिटिवली सोचेंगे, हर बात में क्या मिलेगी हमको? खुशी मिलेगी। खुश रहना है, जो मिले उसमें खुश रहना है, बस कोई बात नहीं। खुश रहना है मुझे, किसी भी हालत में खुश रहना है। जिसने खुश रहना है, खुश रहना है मुझे, खुश रहना है, मैं खुशहाल आत्मा हूँ, ये बात अंदर में बार बार रिपीट किया, जिस बात से देखते हैं कि खुशी नष्ट होगी नहीं, उस बात में मुझे जाना ही नहीं। किसी की गलती को पकड़ेंगे, किसी के दोष को देखेंगे, क्या होगा? खुशी गायब होगी। इसलिए किसी के दोष को हमें देखना भी नहीं है। जो कुछ जो कर रहा है वो अपना भाग्य निर्माण कर रहा है, उसके बारे में मुझे क्या सोचना। मुझे जो खेत मिली उस खेत में मैं फसल उगाऊं, दूसरा किसान अपने खेत में क्या कर रहा है वो जाने। तो दूसरे के कर्म क्षेत्र को जब हम देखते हैं तो हमारी खुशी गायब होती है। इसलिए ईश्वरीय पुरुषार्थियों को क्या करना है? दाया भी नहीं देखना, बाया भी नहीं देखना, पीछे भी नहीं देखना, केवल आगे देखना, आगे देखना, आगे देखना है। मुझे आगे जाना है, मुझे पास होना है, किसी और को पास नहीं, मुझे पास होना है। दूसरों को जो देखेगा उसका नंबर कटा जाएगा। देखने से भी, दिखाई तो देगा, आंख तो बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन देखने से भी सोचना नहीं, कौन क्या कर रहा है करने दो। वो जो कुछ कर रहा है उसके खाते में जमा रहा है, मेरे खाते में तो नहीं जमा हो रहा है। कोई किसी को कुछ कह रहा है उसको देखकर हम दुखी होते हैं, उसने उसकी निंदा की, अब उन दोनों का हिसाब किताब बन रहा है, वो जाने, हमको क्या करना। किसी ने किसी की निंदा की उसको देखकर हम दुखी हो रहे हैं, अरे इसमें हमारा क्या जाता, हमारा खाता अलग, उसका खाता अलग, उसका खाता अलग। वो उसकी निंदा कर रहा है उसका माइनस हो रहा है, वो भी उसको घृणा कर रहा है तो उसका भी माइनस होगा। वो क्या कर रहा है मैं सोचूं और मैं अपने खाते का क्यों माइनस करूं? मुझे अपना खाता संभालना है। अपना खाता संभालना, अपना संपत्ति संभालना, यही समझदारी का लक्षण है। सबसे बड़ी संपत्ति है खुशी। अगर खुशी को संभाल के रखेंगे, हर दिन की कमाई बहुत होती जाएगी, हर दिन की कमाई बढ़ती जाएगी। खुशी को संभालना नहीं आया तो कमाई के बदले कई बार गवाई भी हो सकती है। इसलिए जिस समय जो घड़ी जो सेवा मिली, जो बात सामने आई, उसको खुशी से ग्रहण करना है। कभी प्यार मिलेगा, कभी निंदा मिलेगा, ये तो पक्की बात है। सदा जीवन में एक जैसा नहीं मिल सकता। अगर आपको निंदा मिल रहा है तो आप सोचिए, कोई बात नहीं, कुछ दिन के बाद ये दिन भी बीत जाएंगे, ये दिन भी बीत जाएंगे। आज आपके पास परीक्षा आ रही है, कोई बात नहीं, परीक्षा तो आती है, लेकिन इस परीक्षा में अच्छी तरह मार्क्स लेकर के आप पास हो जाएंगे, प्रमोशन हो जाएंगे। सदा एक जैसा होगा क्या? सदा एक जैसा नहीं होगा। एक जैसी जीवन में परिस्थितियां नहीं आती है, कभी आप कभी डाउन, कभी आप कभी डाउन, लेकिन मुझे दोनों में खुश रहना है। आज संगी साथी बहुत हैं, मैं खुश हूँ, कल कोई नहीं हो तो भी मैं खुश रहूं। आज बहुत धन है, मैं खुश हूँ, कल धन नहीं है मैं दुखी हो जाऊं, नहीं कोई बात नहीं, खुशी रूपी धन तो मेरे पास है, बाबा तो मेरे साथ है। और लास्ट जो बात है वो ये है, सर्व संबंध बाबा से निभाने से हमारे अंदर खुशी का भंडार सदा भरपूर रहता है। संगम युगी जीवन में कभी भी निराशा का अनुभव नहीं होगा, लॉनलीनेस नहीं होगा, अकेलापन फील नहीं होगा, मन मायूस नहीं होगा, जब हमने बाबा को अलग अलग संबंध से याद करना सीख लिया। बाबा मेरा बाबा भी है, बाबा मेरा माँ भी है, बंधु भी है, साथी भी है, सखा भी है, डॉक्टर भी है, पति भी है, पत्नी भी है, बच्चा भी है, नाती भी है, पोती भी है। बाबा के साथ कितने संबंध हम निभा सकते हैं? अलग अलग समय पर अलग अलग संबंध निभा कर देखिए बाबा कितना साथ देता है और उस संबंध का बाबा अनुभव कराता है। और हर अनुभव स्पेशल होता है, हर अनुभव में खुशी छुपी हुई होती है। तो एक एक दिन में एक एक समय पर अलग अलग अनुभव बाबा के साथ करना सीखे तो मायूसी आएगी ही नहीं, खुशी रहेगी। अगर फिर भी आप देखते हैं कभी कुछ दिनों से मेरी खुशी गायब है, पता नहीं क्यों खुशी नहीं लग रही है, खुशी फील नहीं हो रही है, भारी भारी लग रहा है, पता नहीं क्यों, ऐसा तो कुछ नहीं, मुरली भी सुन रहा हूँ, रोज योग भी कर रहा हूँ, शुद्ध भोजन भी खाता हूँ, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन खुशी क्यों नहीं हो रही है, ऐसा अगर आप फील करते हैं कभी कभी, थोड़ी सी कुछ दिन ऐसे आप फील करते हैं, तो एक काम करना चाहिए, वो है कि कहीं छेद तो नहीं, आज की मुरली में था, छेद तो नहीं है हमारे पात्र में, छेद तो नहीं है, होल तो नहीं है। होल क्या है? हो सकता मैं किसी को, किसी के बारे में सोचता हूँ, किसी के अवगुणों को देखता हूँ, किसी की एक्टिविटीज को देखकर अंदर ही अंदर मैं घृणा करता हूँ, तंग होता हूँ, कुछ इस प्रकार के सोच अगर कंटिन्यू कुछ दिन से चल रहे हैं, तो कंटिन्यू खुशी गायब है, समझा ना? तो क्या करना चाहिए? चेक करना चाहिए कि क्यों खुशी गायब हो रही है। इतना सेवा करता हूँ, सारा दिन सेवा करके शाम तक खुशी का भंडारा भरपूर हो जाना चाहिए, और ही मायूस हो जाता हूँ, कहाँ जाती है खुशी? क्या कोई विकर्म तो नहीं हो रहा मेरे से? कई बार हमारे मुख से कुछ ऐसी बात निकलती जो किसी को दुखाता है दिल, माना कमाई भी कर रहे हैं और कमाई जा भी रहा है, खर्च भी हो रहा है, तो किसी के दिल को दुखाएंगे तो खुशी जमा नहीं रहेगी। इसलिए देखना है मेरे द्वारा किसी को दुख मिल रही है क्या? अगर किसी को दुख मिल रही है, अच्छी तरह चेक करिए, और आपको पता चल जाता हाँ फलाने को शायद मेरे द्वारा दुख मिलती है, तो क्या करना चाहिए? उसको बुला के कभी क्षमा मांगना चाहिए, भाई मेरे से कोई गलती होती है, हुई है, आप बता दो, या होती होगी, मुझे थोड़ा फील होता है, अब से मैं ध्यान रखूंगा, आप भी मुझे दुआ दे दो, क्षमा कर दो। क्षमा मांगने में छोटा नहीं होते, क्षमा मांगने वाला तो महान बनता है। क्षमा मांगेंगे तो ये निगेटिव खाता जो चल रही थी वो वहीं स्टॉप हो जाएगी, और तुरंत ये बादल हट जाएंगे, फिर से खुशी आ जाएगा। और अगर आपको पता नहीं चलता किसको दुखा रहा हूँ, क्या हो रहा है पता नहीं, तो बाबा से क्षमा मांगना चाहिए, बाबा कुछ दिनों से खुशी नहीं मिल रही है, पता नहीं कि कहाँ गलती हो रही, कोई तो गलती हो रही होगी, आप तो जानते हो, मैं नहीं जानता हूँ, मैं आपसे क्षमा मांग रहा हूँ, आप मुझे बता दो, आप मुझे दिखा दो, तो क्या होगा? बाबा भी क्षमा करता तो बाबा हमारी बुद्धि को क्लीन कर देता, बुद्धि क्लीन हो जाती तो पता चल जाता, अच्छा ये शायद गलती हो रही है मेरी, ठीक है अब से मैं ये ठीक कर लेता हूँ, फिर तुरंत खुशी आ जाएगी। इसलिए खुशी अगर गायब है तो खुशी गायब की स्थिति को ज्यादा दिन तक चलने नहीं देना है। एक दिन सारा दिन खुशी गायब हुई, माना कितना हमारा खजाना छेद में से निकल गया। दो दिन, तीन दिन, चार दिन, सात दिन खुशी नहीं, माना हमारा सारा बैंक अकाउंट खत्म। इसलिए तुरंत ही चेक करना है, तुरंत ही उसको होल को बंद करना है। कुछ पता नहीं चलता तो बाबा के सामने बैठना है, बाबा से क्षमा मांगना है, बाबा की खूब महिमा करनी है। कई बार बाबा की महिमा करने से भी खुशी नहीं हो रही तो अपने संगी साथियों की महिमा करो, उसमें भी इतना अच्छा गुण है, फलाने में इतना अच्छा गुण है, आहा ये गुण तो मेरे में नहीं है, फलाने में कितना अच्छा गुण है, फलाने में कितना अच्छा गुण है। एक दिन बैठ करके एक घंटा टाइम निकाल करके आप मन ही मन सबकी गुणगान कीजिए, प्रेज कीजिए, प्रशंसा कीजिए, आपका मन खुश हो जाएगा, और सामने मिलने पर उस व्यक्ति के सामने भी आप दिल से प्रशंसा कीजिए। ऐसे नहीं आर्टिफिशियल प्रशंसा नहीं, लेकिन जो रियल बात है, रियल बात के लिए आप प्रशंसा कीजिए। प्रशंसा करने पर जिसकी प्रशंसा की उसको खुशी मिली ना, उसको खुशी मिली तो तुरंत हमको भी रिटर्न में खुशी मिलती। और एक बात मैंने प्रैक्टिकल करके देखा, वो है प्रकृति को योग का दान। प्रकृति को योग का दान तुरंत ही खुशी देता है, प्रकृति को योग का दान हमें खुशी देता, क्यों? प्रकृति निष्पाप है। जब हम उसको योग का दान, शुभ भावनाओं को दान देते, पेड़ पौधे, आकाश, वायु, पृथ्वी, ये जो पंच तत्व प्रकृति है ना, प्रकृति को जब हम शुभ भावना का दान देते, प्रकृति उसको तुरंत कैच करती, प्रकृति रिसीव कर लेती, प्रकृति खुश हो जाती। इसका प्रमाण है कि प्रकृति को योगदान देने के नेक्स्ट मोमेंट में हम खुश हो जाते। हमारे पास पता नहीं कहाँ से खुशी ऐसे आने लगती, जैसे कि कहीं फैन का हवा चल रहा है, अब यहाँ नीचे से कोई ने फैन चला दिया हो, नीचे पाँव में बहुत हवा लग रही है, अरे ये हवा कहाँ से आ रही है। इसी प्रकार अगर प्रकृति को हम योग का दान देते हैं हमारे मन में जैसे खुशी का फैन लगने लगता, खुशी का पंखा चलने लगता, इतना फर 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 खुशी कहाँ से आने लगा। प्रकृति से हमको रिटर्न में खुशी मिली क्योंकि हमने प्रकृति को खुशी दी। प्रकृति जो है ना वो जल्दी कैच कर सकती है, मनुष्य भले कैच करने में देरी करते लेकिन प्रकृति कैच करती है। प्रकृति की रोज हम थोड़ी देर नियम से सेवा करें, पंचतत्व प्रकृति जिसने हमारी इतनी सेवा की 5000 साल से, हम ऋणी हैं उस प्रकृति को। हम अपने अंदर की कृतज्ञता प्रकाश करें, उसको शांति का दान दे, प्यार का दान दे, हमारी अंदर की जो भावना का दान दे उसको धन्यवाद करें तो तुरंत खुशी मिल जाती है। समझा ना, ये एक बहुत अच्छा तरीका है। और एक तरीका ये है कि बीच बीच में अपनी भट्टी करना, अपनी भट्टी करना, अपने आप अपनी भट्टी करना पर्सनल। आज मुझे समय मिला है आधा दिन मैं अकेले बैठकर भट्टी करूंगा, आज मुझे एक दिन फुल डे मिला है आज मैं सारा दिन मौन में रह के अपने साथ बात करूं भट्टी करूंगा, या मुझे सारा दिन भी नहीं मिलता मुझे 3 घंटा टाइम मिला आज 3 घंटा में कंटिन्यू एक अच्छे स्थान पर बैठ के योग भट्टी करूंगा। इससे आत्मा रूपी बैटरी जो है वो चार्ज होती है, जब चार्ज भर जाती है तो खुशी भी आ जाती है। खुशी है तो आत्मा में चार्ज है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि खुशी देने से खुशी बढ़ती है। कहते धन दिए धन ना खुटे, धन दान देने से धन मिलता है, जो चीज का दान करते वो चीज मिल जाता है वापस। विद्या दान करने वाली की विद्या वृद्धि होती है, धन दान करने वालों की धन वृद्धि होती, खुशी दान करने वालों की खुशी वृद्धि होती है। इसलिए जितना हो सके हमें दूसरों को खुशी देने की सेवा करनी है। खुशी देंगे, थोड़ी सेवा करेंगे, थोड़ा अच्छी बात सुना देंगे, थोड़ा शुभ भावना दे देंगे, थोड़ा मदद कर देंगे, थोड़े मीठे बोल बोलेंगे, समहाउ उसको खुशी देंगे किसी को भी, आत्माओं को, तो हमें खुशी मिलता है। हो ही नहीं सकता हमने खुशी दिया और हमें खुशी नहीं मिला, ये हो ही नहीं सकता। खुशी देने से खुशी जरूर मिलेगी। तो कितने सारे खुशी के बाबा ने हम सबको तरीके सिखाए हैं। हमने देखा विदेश के भाई बहन जो है ना, विदेशी लोग सदा खुश रहते हैं, ये उनकी विशेषता देखी हमको बहुत अच्छा लगा। वो किसको भी देखेंगे ना स्माइल देंगे, हंसेंगे, गुड मॉर्निंग बोलेंगे, गुड इवनिंग बोलेंगे, हेलो बोलेंगे। हम विदेश गए थे वहाँ भी देखा बिल्कुल अजनबी, हम किस देश से आए वो किस देश के, परंतु जो भी सामने से जाता हेलो करता, हाउ आर यू करता, एक सुंदर हंसी देता। हमको लगा देखो ये लोग हंसी से खुशी दे रहे हैं ना, और हम लोग भारतवासी इतने बड़े भंडार के मालिक और हम सब चेहरे में कोई खुशी नहीं दिखा सकते। हम खुशी है तो भी खुशी को एक्सप्रेशन करना नहीं जानते हैं। इसलिए चेहरे में खुशी ये बिना पैसे का गिफ्ट हम सारा दिन सबको दे सकते हैं। अगर हम चेहरे से खुशी देते रहें तो भी तो हमको खुशी मिल। हमारे ब्राह्मण परिवार में भी कई भाई बहने हैं जो हंसना नहीं जानते, खुशी देना नहीं जानते। पहचाना हुआ मिलने से मुस्काएंगे, बिना पहचाने तो मुस्काते नहीं। अरे भाई सारा ब्राह्मण परिवार पहचानने की क्या जरूरत है, किसी को भी देखो मुस्कुराते जाओ, ऑटोमेटिक ये मुस्कुराना ऑन रहे, जो भी सामने आए आपको देखकर वो भी मुस्कुराएगा। तो मुस्कान जैसी अनमोल गिफ्ट और कुछ नहीं। दादी प्रकाशमणि जी के चित्र को देखिए, बस मुस्कान का जीता जागता स्वरूप। तो ये बात, ये थोड़ी बात हमने आपसे शेयर की। मैं भी कोशिश करती हूँ कि सदा खुश कैसे रहूं, और जब कभी थोड़ी खुशी की कमी होती है तो मैं चेक करती हूँ कि आज खुशी कहाँ गई, क्यों गई, किधर गई, क्या कारण हुआ, चेक करने पर पता चल जाता है। और फिर पता चल जाने पर उसकी दवाइयाँ तो ढेर सारी बाबा ने बता दी है, तुरंत ट्रीटमेंट करो और फिर खुश हो जाओ। ओम शांति।